بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قرآن مجید کے سورہ یونس کی 47ویں، 48ویں اور 49ویں آیتوں کی تلاوت کا شرے پراپت کر رہے ہیں قاری قاسم رضیعی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة رسول، فإذا جاء بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر سمودائے کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ نیائے پوروک کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، और कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो ये धमकी कब पूरी होगी? कह दो, मुझे न तो अपने बुरे का अधिकार है न भले का, बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। हर जाति के लिए एक नियत समय है, जब उनका नियत समय आ गया तो उससे न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है, जनवरी की 20, जमादी सानी की 17 और देई माह की 30 तारीख। कार्यक्रमों में पहले आप समाचार सुनेंगे, उसके बाद राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के उपरांत हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे आज की बात, और सभा का हमारा अंतिम कार्यक्रम होगा सफल महिलाएं। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको बताते चलें कि हमारे कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, पता है partstoday.com/hi। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच लंबी मुलाकात में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बाइडेन का कहना है कि वियना वार्ता में प्रगति हो रही है। यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इसराइल के कॉलोनियल निर्माण का विरोध किया है। लाहौर में अनारकली बाजार में विस्फोट में कई लोग मारे गए हैं। और अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 3 घंटे की लंबी मुलाकात हुई। रूस में ईरान के राजदूत काजिम जलाली ने कहा है कि इस मुलाकात की समय सीमा तय नहीं थी, क्योंकि इसके लंबे खिंचने की संभावना पहले से थी। मास्को यात्रा पर राष्ट्रपति रईसी के साथ मौजूद ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात के बारे में विस्तार से बताया। उल्लेखनीय है कि ईरान और चीन के बीच पहले 25 वर्षीय स्ट्रेटेजिक सहयोग का समझौता विश्व स्तर पर चर्चा का केंद्र बन चुका है। विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने मॉस्को में ईरान के टीवी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बताया कि कोरोना महामारी के कारण हालात असामान्य हैं, लेकिन इसके बावजूद गाइडलाइनों पर अमल करते हुए दोनों राष्ट्रपतियों की मुलाकात 3 घंटे से भी अधिक समय तक चली, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वियना में ईरान के साथ जारी परमाणु वार्ता में प्रगति हो रही है और ये कूटनीति का रास्ता छोड़ने का समय नहीं है। बाइडेन ने बुधवार को कहा कि अमेरिका की ओर से ईरान से वार्ता करने वाले देशों के बीच इस बात पर सहमति है कि वियना वार्ता में प्रगति हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बयान दिया है जब इससे पहले अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से बार बार ईरान पर दबाव डाला जा रहा था कि परमाणु समझौते की बहाली के लिए समय सीमित है और अगर उचित समय सीमा के भीतर परमाणु समझौते की बहाली पर सहमति नहीं बन जाती तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम उस स्थिति से आगे पहुंच चुका होगा जिस स्थिति में ईरान के साथ पश्चिमी दोनों देशों ने परमाणु समझौता किया था। वियना में जारी वार्ता में इस्लामी गणतंत्र ईरान ने दो टूक रूप में अपना पक्ष रख दिया कि वो परमाणु समझौते के समर्थन में है, लेकिन जब अमरीका ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लेगा और ईरान को व्यवहारिक रूप से महसूस हो जाएगा कि प्रतिबंध वाकई हट गए हैं, तो वो परमाणु समझौते की उन प्रतिबद्धताओं पर अमल शुरू कर देगा।
संयुक्त अरब इमारात ने अबू धाबी और दुबई पर होने वाले हालिया हमले के बाद इसराइल से मदद की गुहार लगाई है। इसराइल की अखबार यदीउत अहारोनोत ने इसराइली सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि यूएई इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसराइली एयर डिफेंस उद्योग से जुड़ी कंपनी के डायरेक्टर ने बताया है कि इमारात ने पिछले दिनों होने वाले हमले के बाद इसराइल से कहा है कि फौरन वो मदद के लिए आगे आए। इमारात में इसराइल के जो उपकरण और रक्षा सिस्टम मांगे हैं उनमें ड्रोन विमान और कई प्रकार के मिसाइल शामिल हैं। स्काईलुक कंपनी के कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि हालिया हमले के बाद से इमारात के अधिकारी बार बार इसराइल से आग्रह कर रहे हैं कि वे फौरन उनकी मदद करें। इमारात ने इसराइल के सामने जरूरत के एयर डिफेंस उपकरणों की लंबी सूची रख दी है।
ज़ायनी शासन द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों में कॉलोनी निर्माण का यूरोपीय देशों ने विरोध किया है। चार यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इसराइल द्वारा कॉलोनी निर्माण के काम को गैर कानूनी बताया है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन के विदेश मंत्रियों ने ज़ायनी शासन के इस फैसले को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया है, जिसके अंतर्गत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में नई कॉलोनियां बनाने का निर्णय लिया गया है। इन चारों यूरोपीय देशों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के गठन के लिए किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बीच नई कॉलोनियों का निर्माण क्षेत्र में नई समस्याएं पैदा करेगा।
सऊदी अरब में भ्रष्टाचार निरोधक समिति ने यह ऐलान किया है कि कई मंत्रालयों के दर्जनों अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। समिति ने कहा है कि उसने पिछले कुछ समय से खुद कई मामलों की करीब से निगरानी की और ये पाया कि बड़ी संख्या में अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। नजाहा नाम की समिति ने गत वर्ष 5 दिसंबर को ऐलान किया था कि वो 657 लोगों के बारे में जांच कर रही है, जबकि गिरफ्तार किए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या 250 तक पहुँच चुकी है। समिति ने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों का संबंध रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और आवास मंत्रालय से है। इन लोगों पर रिश्वत लेने और अपने अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप है।
पाकिस्तान के लाहौर नगर के अनारकली बाजार में हुए विस्फोट में कम से कम 3 लोग मारे गए। डॉन के अनुसार लाहौर के अनारकली बाजार में गुरुवार को एक विस्फोट हुआ जिसमें कम से कम 3 लोग मारे गए और 22 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायलों में 5 लोगों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लाहौर पुलिस की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि आरंभ में यह सिलेंडर विस्फोट लग रहा था, किंतु बाद में पता चला कि बम एक बाइक में रखा गया था। विस्फोट के परिणाम स्वरूप निकट की इमारतों के शीशे टूट गए। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री ने घटना की जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने घायलों के उपचार का भी आश्वासन दिया है। ज्ञात रहे कि इससे पहले जून में लाहौर के जौहर टाउन क्षेत्र में एक विस्फोट हुआ था जिसमें पुलिसकर्मी सहित 3 लोग मारे गए थे जबकि 21 घायल हो गए थे।
तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि देश के लोगों की स्थिति जल्द ही बेहतर होने वाली है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान न हों। जनता द्वारा की जा रही कड़ी आलोचना के बीच रजब तैयब अर्दोगान ने तुर्की की जनता को वचन दिया है कि निकट भविष्य में आपके जीवन में सुधार आएगा। तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि 2022 के अंत तक देश के लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा। अर्दोगान ने दावा किया है कि उनकी सरकार की आर्थिक योजनाओं ने बढ़ती महंगाई को रोकने में बहुत सहायता की है। इसी के साथ तुर्की के राष्ट्रपति का ये भी कहना है कि जनवरी समाप्त होने तक देश के सभी लोगों की आय में वृद्धि होगी। हालांकि इससे पहले अर्दोगान द्वारा किए गए वादों के बावजूद डॉलर के मुकाबले में तुर्की की करेंसी लीरा की कीमत लगातार गिर रही है। तुर्की में तेजी से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और निर्धनता के कारण रजब तैयब अर्दोगान की लोकप्रियता घटती जा रही है। जनता में व्याप्त संतोष को कम करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति ने कुछ समय पहले तनख्वाहों को बढ़ाने का निर्णय लिया था, लेकिन करेंसी की कीमत घटने और तेजी से बढ़ती महंगाई के कारण इसका कोई भी उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा।
रूस का कहना है कि पश्चिम द्वारा यूक्रेन को हथियार भेजना किसी सैन्य कार्रवाई की तैयारी को दर्शाता है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है कि यूक्रेन को हथियार भेजना और रूस पर आरोप पड़ना वो काम है जो पश्चिम की उकसावे वाली कार्रवाई है। मारिया जखारोवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि मीडिया के लेटेस्ट रिपोर्ट हमारी चिंता की पुष्टि करती है। पिछले कुछ दिनों से ब्रिटेन अपने सैन्य परिवहन विमानों से यूक्रेन के लिए हथियार भेज रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि कनाडा के 200 से अधिक कमांडो को यूक्रेन में इस देश के दूतावास की सहायता करने की आड़ में भेजा गया है।
तुर्की का कहना है कि हर संकट से बचने के लिए वो रूस और यूक्रेन की मेजबानी के लिए तैयार है। तुर्की के विदेश मंत्री इब्राहिम कालेन ने कहा है कि अंकारा का ये मानना है कि यूक्रेन संकट का समाधान वार्ता के माध्यम से ही संभव है। ऐसे हालात में कि जब पश्चिम द्वारा यूक्रेन संकट को बढ़ावा दिया जा रहा है, तुर्की के राष्ट्रपति की यूक्रेन यात्रा की बातें कही जा रही हैं, तुर्की के राष्ट्रपति ने रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम कराने की बात कही है। इब्राहिम कॉलेन ने गुरुवार को बताया कि यूक्रेन संकट का सैन्य समाधान संभव नहीं है। तुर्की के सरकारी समाचार माध्यमों के अनुसार इस देश के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान निकट भविष्य में यूक्रेन की यात्रा करने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि देश के साथ यूपी में बेरोजगारी दर सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। यूपी में कामकाजी उम्र के लोगों में रोजगार प्राप्त करने की दर 38.5% से गिरकर 32.8% हो गई है। युवाओं में नौकरी पाने की दर में भी भारी गिरावट आई है। युवाओं में बेरोजगारी दर 15.66% से बढ़कर 28.26% हो गई है। भाजपा यूपी के चुनावी मोर्चे पर समाजवादी पार्टी से गहरी चुनौती झेल रही है। उसे बेरोजगारी और महंगाई के मोर्चे पर लोगों की भारी नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है।
भारत ने गुरुवार को अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करते हुए ओडिशा के तट से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए वर्जन का सफल परीक्षण किया है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अनुसार बेहतर नियंत्रण प्रणाली सहित अन्य नई तकनीकों से लैस इस मिसाइल को गुरुवार सुबह स्थानीय समय के अनुसार 10:45 पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से लॉन्च करके प्रक्षेपित किया गया। ये मिसाइल कार्यक्रम भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग के तहत संयुक्त उपक्रम है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنت ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी, जो मॉस्को की यात्रा पर हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 3 घंटे की लंबी मुलाकात के बाद प्रवासी ईरानियों की बैठक में पहुंचे। बैठक में बड़ी बेतकल्लुफी का माहौल रहा। इसमें विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, संसद के 3 आर्थिक आयोगों के प्रमुख, रूस में ईरानी संस्थाओं के प्रमुख, व्यापारी उद्योगपति, छात्र, डिप्लोमेट और उनके परिवार के लोग मौजूद थे। इस बैठक में मॉस्को में ईरान के राजदूत काजिम जलाली ने इस बैठक की शुरुआत में आर्थिक क्षेत्र सहित समस्त क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग के विस्तार की संभावनाओं और पोटेंशियल के बारे में रिपोर्ट पेश की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की है कि ईरान ने वार्ता की मेज पर प्रतिबंधों को हटाने और परमाणु समझौते से दोबारा अमेरिका के न निकलने की गारंटी की मांग। उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव रोचक होता जा रहा है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा की 33 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी, जो मॉस्को की यात्रा पर हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 3 घंटे की लंबी मुलाकात के बाद प्रवासी ईरानियों की बैठक में पहुंचे। बैठक में बड़ी बेतकल्लुफी का माहौल रहा। इसमें विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, संसद के 3 आर्थिक आयोगों के प्रमुख, रूस में ईरानी संस्थाओं के प्रमुख, व्यापारी, उद्योगपति, छात्र, डिप्लोमेट और उनके परिवार के लोग मौजूद थे। इस बैठक में मॉस्को में ईरान के राजदूत काजिम जलाली ने इस बैठक की शुरुआत में आर्थिक क्षेत्र सहित समस्त क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग के विस्तार की संभावनाओं और पोटेंशियल के बारे में रिपोर्ट पेश की। सैयद अली दराबी की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही अहमद अब्बास।
राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी, जो मॉस्को की यात्रा पर हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 3 घंटे की लंबी मुलाकात के बाद प्रवासी ईरानियों की बैठक में पहुंचे। बैठक में बड़ा बेतकल्लुफी का माहौल रहा। इसमें विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, संसद के 3 आर्थिक आयोगों के प्रमुख, रूस में ईरानी संस्थाओं के प्रमुख, व्यापारी, उद्योगपति, छात्र, डिप्लोमेट और उनके परिवार मौजूद थे और राष्ट्रपति की बातें सुन रहे थे। इस बैठक में मॉस्को में ईरान के राजदूत काजिम जलाली ने इस बैठक की शुरुआत में आर्थिक क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग के विस्तार की संभावनाओं और पोटेंशियल के बारे में रिपोर्ट पेश की, साथ ही रुकावटों को भी रेखांकित किया। कुछ व्यापारियों और उद्यमियों ने इस अवसर पर मांग की कि ईरान की सरकार आपसी व्यापार के रास्ते में आने वाली रुकावटें दूर करने के लिए प्रभावी रूप से कदम उठाए। राष्ट्रपति रईसी ने सभी क्षेत्रों में सहयोग विस्तार की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच लेन देन का स्तर बेहतर हुआ है, लेकिन अभी इसे और ऊपर ले जाने की गुंजाइश मौजूद है। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि आपसी लेन देन और व्यापार के मार्ग की रुकावटों के बारे में जो बातें सामने रखी गईं, उन पर ध्यान देते हुए रुकावटों को दूर किए जाने की जरूरत है। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि हमारे देश के लिए रूस में बहुत अच्छा बाजार मौजूद है। अब उत्पादन के क्षेत्र में सक्रिय आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि सहयोग कीजिए कि हम रुकावटों को पूरी तरह दूर कर सकें। निर्यात की प्रक्रिया को मुश्किल बनाने वाले कानूनों में सुधार करने की जरूरत है ताकि निर्यात का काम सुचारू रूप से अंजाम पाए। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि निर्यात में हमारी हिस्सेदारी वो नहीं है जो होनी चाहिए, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि ये बात राष्ट्रपति पुतिन ने भी कही। उन्हें भी इस स्थिति की जानकारी है। रूस के साथ ईरान का व्यापार बेहतर होकर एक उचित सतह पर पहुंच सकता है। इस समय जिस मात्रा में व्यापार दोनों देशों के बीच हो रहा है, वो मेरी नजर में भी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर में भी, और इसी तरह यहाँ इस बैठक में मौजूद आप सभी व्यापारियों और उद्यमियों की नजर में भी संतोषजनक नहीं है। इसे आगे ले जाने की जरूरत है और इसकी संभावनाएं भी पूरी तरह मौजूद हैं। इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए और रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने रूस के बाजार को ईरानी उत्पादों के लिए बहुत अच्छी मंडी करार दिया और कहा कि इस देश के लिए ईरानी उत्पादों के निर्यात के मार्ग की रुकावटें दूर किए जाने की जरूरत है और इस संदर्भ में काम करना है।
احساسم این بود که اراده جدی وجود داره برای رفع این موانع و این مشکلات.
راشپتی رئیسی کا کہنا تھا کہ روس کے راشپتی ولادیمیر پوتین سے ملاقات میں انہیں اسپشٹ روپ سے یہ محسوس ہوا کہ دونوں دیشوں میں آپسی ویاپار اور لین دین کو بڑھاوا دینے اور اس مارگ میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مضبوط اچھا شکتی پائی جاتی ہے.
توجہ به بازار بشود دستوری فکر نه ما اونطوری فکر نمی‌کنیم.
راشپتی رئیسی نے ودیشی مدرا کے بھاؤ میں آنے والے اتار چڑھاؤ کی اور اشارہ کیا اور کہا کہ اس پرکریا کو بازار کی استھتیوں اور خاص پرمپراؤں کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اسے آدیش جاری کر کے کنٹرول کرنا سمبھو نہیں ہے. ماسکو سے آئی آر آئی بی کے لیے سید علی داراوی کی رپورٹ.
امریکی ودیش منتری اینٹنی بلنکن نے ایک انٹرویو میں اس بات کی پشٹ کی ہے کہ ایران نے وارتا کی میز پر پرتبندھوں کو ہٹانے اور پرمانو سمجھوتے سے دوبارہ امریکہ کے نہ نکلنے کی گارنٹی کی مانگ کی ہے. بلنکن نے اپنے ساکشاتکار میں اس بات کو سویکار کیا کہ ایران امریکہ کے پرمانو سمجھوتے سے نکلنے سے پہلے تک پرمانو سمجھوتے میں وارد اپنے سارے وچنوں پر پرتبدھ تھا اور ٹرمپ پرشاسن نے بھی یہ سویکار کیا ہے. ساتھ ہی اختر عباس،
امریکی ودیش منتری اینٹنی بلنکن نے ایک انٹرویو میں اس بات کی پشٹی کی ہے کہ ایران نے وارتا کی میز پر پرتبندھوں کو ہٹانے اور پرمانو سمجھوتے سے دوبارہ امریکہ کے نہ نکلنے کی گارنٹی کی مانگ کی ہے. بلنکن نے اپنے انٹرویو میں اس بات کو سویکار کیا ہے کہ ایران امریکہ کے پرمانو سمجھوتے سے نکلنے سے پہلے تک پرمانو سمجھوتے میں ورنت اپنے سارے وچنوں پر پرتبدھ تھا اور ٹرمپ پرشاسن نے بھی یہ سویکار کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ پورو سرکار تک نے یہ کہا ہے کہ ایران اپنے وچنوں پر اچھی طرح سے عمل کر رہا ہے. جو چیز سب سے کھیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سے ہم پرمانو سمجھوتے سے باہر ہوئے ہیں تب سے ایران نے اس کو ایک ہتھکنڈے کے روپ میں پریوگ کرتے ہوئے بہت سی خطرناک گتیویدھیاں شروع کر دیں جس سے پرمانو سمجھوتا روکتا تھا. امریکہ اور اس کے یورپی سہیوگی اسرائیل کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ورشوں سے ایران پر پرمانو گتیویدھیوں کو سینیہ آیام دینے کا آروپ لگاتے رہے ہیں اور ایران ہمیشہ سے ان کے دعووں کو رد کرتا رہا ہے اور اس کا یہ ماننا ہے کہ تہران این پی ٹی اور انتراشٹری پرمانو ارجا ایجنسی کا ذمہ دار سدسیہ ہے اور اسے شانتی پورن لکشوں کے لیے پرمانو تکنیک حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے. واستو میں امریکی ودیش منتری کا یہ بیان اور ان کی یہ سویکرتی اس بات کا چن ہے کہ بائیڈن سرکار پرتبندھوں کو ہٹانے اور پرمانو سمجھوتے سے نہ نکلنے کی گارنٹی کے روپ میں ایران کی حق مانگ کو سویکار کرنے اور اپنے ورتمان درشٹی کون کو بدلنے پر وچار کر رہی ہے.
اتر پردیش میں ہونے والا ودھان سبھا چناؤ روچک ہوتا جا رہا ہے. بھیم آرمی کے پرمکھ چندر شیکھر آزاد نے کہا ہے کہ وہ راجیہ کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف گورکھپور صدر سیٹ سے چناؤ لڑیں گے.
اتر پردیش ودھان سبھا چناؤ روچک ہوتا جا رہا ہے. بھاجپا اور سماجوادی پارٹی کے 20 سیدھے مقابلے کے ساتھ ہی اب بھیم آرمی کے پرمکھ چندر شیکھر آزاد نے ایک سنواددتا سمیلن میں گھوشنا کی ہے کہ وہ گورکھپور صدر سیٹ سے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ کے ورودھ ودھان سبھا چناؤ لڑیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم پریورتن کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے بھیم آرمی پرمکھ نے 18 جنوری کو یو پی کی 33 سیٹوں پر اپنے امیدواروں کا اعلان کیا تھا. رام مندر آندولن سے لے کر مودی لہر تک گورکھپور صدر سیٹ کی اہم بھومکا رہی ہے جو یوگی آدتیہ ناتھ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. یہ سیٹ لمبے سمے سے بھاجپا کے قبضے میں رہی ہے. پچھلے 15 جنوری کو یوگی آدتیہ ناتھ نے گورکھپور صدر سیٹ سے چناؤ لڑنے کی گھوشنا کی تھی. اس سے پہلے سمجھا جا رہا تھا کہ یوگی ودھان سبھا چناؤ ایودھیا سے لڑیں گے. چندر شیکھر اور سپا پرمکھ اکھلیش یادو کے بیچ گٹھ بندھن کی بات چیت شروع ہوئی تھی لیکن یہ کسی نشکرش پر نہیں پہنچ پائی. چندر شیکھر نے آروپ لگایا تھا کہ اکھلیش یادو کو دلتوں کا ووٹ تو چاہیے لیکن وہ دلت نیتا کو سویکار نہیں کرنا چاہتے. اکھلیش یادو دراصل بھیم آرمی کو جتنی سیٹ دے رہے تھے وہ اسے سویکار نہیں تھا. इसके कारण चुनावी गठबंधन नहीं हो सका। सपा भीम आर्मी को केवल 2 सीटें देना चाहती थी। चंद्रशेखर आजाद ने वर्ष 2015 में भीम आर्मी का गठन किया था। मई 2017 में जब शब्बीरपुर गांव में जातीय हिंसा हुई थी तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरी थी। जेल से रिहा होने के बाद चंद्रशेखर ने मिशन जारी रखा और दलितों के खिलाफ होने वाले मामलों में कार्रवाई की मांग उठाते रहे। उधर विधानसभा चुनाव से पहले जहां भाजपा के कई विधायक और मंत्री सपा में शामिल हुए, वहीं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के बाद आज उनके साढ़ू और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सफल महिलाएं, पर उससे पहले आप सुनिए दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम आज की बात।
आज की बात।
श्रोताओ, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत में जारी कोरोना वायरस की महामारी की तीसरी लहर की। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में इस समय कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी है और चूंकि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत पहुंच चुका है, इसलिए संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन यह भी देखा गया है कि बहुत जल्द पीक पर पहुंच जाने के बाद उसमें गिरावट भी शुरू हो जाती है। मिशिगन यूनिवर्सिटी की महामारी विशेषज्ञ शोधकर्ता प्रोफेसर भ्रमण मुखर्जी ने इंडिया टुडे के कार्यक्रम में बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को बयान किया। उनका कहना था कि जनवरी के अंत तक भारत में तीसरी लहर पीक पर पहुंचेगी, अलबत्ता दिल्ली और मुंबई में संक्रमण में गिरावट आ रही है।
थैंक यू सो मच राजदीप फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू द व्यूअर्स अगेन। सो व्हाट वी सी इज अ लिटिल बिट रीअश्योरिंग फ्रॉम public health perspective is that we see Delhi, Maharashtra, West Bengal, some of the states which bloomed early to peak early, and it is in the next 7 or 10 days, and we see that there has been a slowdown in terms of the growth of the trajectory. For example, Delhi had an R or basic reproduction number of around 2, and now it has come down to about 1.4. So I am hopeful. Test positivity rates have really lowered slightly. So I am hopeful that some of the states are going to peak. Some of the states which have been in the news will peak in the next 7 days or so. And what we see is that India peaking late January, because it is always the case for India, as we have talked several times, that it is a multiple nations within a nation. There is usually a cascade of peaks coming through different regions, states and union territories. And that's the pattern that we see for the third wave as well. And as a result, the national case count we see to be peaking around late January.
भारत में जहां रोजाना आने वाले नए मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, वहीं दिल्ली और मुंबई में इसकी दर में गिरावट देखी गई। मुंबई में गत सोमवार को जब 10,000 से कम संक्रमित सामने आए, तो विशेषज्ञों ने यह कहना शुरू किया कि मुंबई और दिल्ली में गिरावट शुरू हो गई है। मुंबई में ये दर 20,000 को पार कर चुकी थी। महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स के सदस्य शशांक जोशी का कहना है कि आगे चलकर कोरोना मलेरिया की तरह हो जाएगा।
वो एंडेमिक होने की संभावना अप्रैल से जुलाई तक बहुत ज्यादा है। मैं आशावादी हूँ कि हमको कोविड से हम डेंगू मलेरिया या नॉर्मल फ्लू देखते हैं वैसे ही उसके ट्रीटमेंट जून जुलाई से होगी और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है।
दिल्ली में भी रोजाना प्रकाश में आने वाले मामलों की संख्या 28,000 से अधिक हो गई थी जिसके बाद इसमें गिरावट देखी गई। गत सोमवार को ये संख्या कम होकर 15,000 तक पहुंच गई थी। उस समय से ही ये बातें होने लगी कि अब इसमें गिरावट आ चुकी है। प्रोफेसर मुखर्जी का कहना था कि कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट में देखने में आया कि ये बहुत तेजी से फैलकर पीक तक पहुंच जाता है और फिर तेजी से ही इसमें गिरावट भी आने लगती है।
That's what it seems like, that, you know, given the high transmissibility of Omicron, it's really ripping through the population and spreading like wildfire. That also implies that it cannot be sustainable for a long period of time, elongated period of time, and we see a tall and skinny behavior here.
सरकार बार बार ताकीद कर रही है कि कोरोना के संदर्भ में सतर्कता बरती जाए, लापरवाही ना की जाए। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि ओमिक्रॉन आम सर्दी जुकाम नहीं है। उन्होंने वैक्सीन लेने पर भी जोर दिया।
ओमिक्रॉन इज नॉट कॉमन कोल्ड। सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि इसको स्लो करें। इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है कि अपनी प्रोटेक्शन करें मास्क से, फैमिली की प्रोटेक्शन करें मास्क लगा के, और प्रोटेक्शन करें वैक्सीन लेके, जो भी छूटे हैं, जिनको भी ड्यू है। द फैक्ट रिमेंस दैट वैक्सीनेशन इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, क्रिटिकल पिलर।
यही नहीं, खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में हालात पर बात की। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति के बारे में बात की और साथ ही मनोबल बढ़ाने के लिए कहा।
100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। परिश्रम हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर अवश्य निकलेंगे और आप सबसे भी बातें मैंने सुनी हैं उसमें भी वही विश्वास प्रकट हो रहा है। अभी ओमिक्रॉन के रूप में जो नई चुनौती आई है, जो केसों की संख्या बढ़ रही है, उसके बारे में हेल्थ सेक्रेटरी तरफ से विस्तार से हमें जानकारी दी गई है। अनेक मुख्यमंत्री समुदाय की तरफ से भी, और वो भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के, काफी महत्वपूर्ण बातें हम सबके सामने आई है। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही। पहले जो वेरियंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। भारत में हमारे वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स हर स्थिति और आंकड़ों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े।
वहीं सरकार और चिकित्सा विशेषज्ञों की बार बार ताकीद के बाद भी लोग बार बार बेहतियाती भी कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गत 14 जनवरी को एक कार्यक्रम हुआ जो इसके बाद तक भी चलता रहा। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित हुई। लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे मगर समस्या ये थी कि लोग गाइडलाइनों का पालन करने के लिए तैयार नहीं थे। एक श्रद्धालु सुरभि चतुर्वेदी इस स्थिति से आहत दिखाई दी।
यहाँ पे लोग खड़े हैं अपना आराम से बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, कोई गाइडलाइन का पालन नहीं है, कोई मतलब नहीं। बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग मास्क लगाइए, बताइए सरकार क्या करेगी। गलती हमें लोग की है ना कि हम लोग को पालन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई पालन नहीं, कोई बात सुनने के लिए राजी ही नहीं है।
तट पर तैनात अधिकारी अभिजीत दास गुप्ता कहते हैं कि वो पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं।
जितना श्रद्धालु है इनको भी हमने अनुरोध किया हुआ, जहाँ तक हमसे हो सकता है कि आप भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, प्रोटोकॉल जो है कोविड प्रोटोकॉल उसको फॉलो करिए। सो किसी भी तरीका का, ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, किसी भी तरीका का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए।
बम शंकर पांडे धर्मगुरु हैं और कार्यक्रम में पूरी श्रद्धा के साथ वो मौजूद थे। उनका कहना था कि ये दिन महत्वपूर्ण है।
ये तो डर तो सबका ही है, सबके मन में ही डर है, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, यही उम्मीद रखेंगे कि जल्दी से ये कोरोना जो महामारी है, जो पैंडेमिक है, इससे हमको मुक्ति मिले और हम जैसे पहले दिन जैसे जिंदगी गुजरते हैं वैसे ही गुजरते रहेंगे।
आज का दिन बहुत ही पवित्र है। आज का दिन जो गंगा स्नान करके कपिल मुनि का दर्शन करते हैं और गंगा स्नान करके गौ दान करते हैं, उसका बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है।
सागर सुदीप्ता मंडल प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी तट पर तैनात दिखाई दिए और उन्होंने मीडिया को यकीन दिलाया कि गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है।
पुण्य का जो पानी है वो यहाँ से पानी ला के इधर लाया गया है, उसको स्प्रे करा किया गया नदी के ऊपर। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 50 आदमी से ज्यादा नहीं रहने दिया इधर, तो जो आदमी इधर खड़ा था वो चला गया, दूसरा बैच आएगा, इसलिए जो प्लेस है उसमें सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन है, चारों ड्रोन हमने यूज किया।
मगर जैसा कि सुरभि ने कहा, अनेक अवसरों पर ये स्थिति हुई कि कोरोना गाइडलाइनों को नजरअंदाज कर दिया गया। इस अवसर पर 10 लाख लोगों के इस स्थान पर पहुंचने की अपेक्षा जताई गई। जहां कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं, वहीं बहुत से लोग घबराए हुए भी हैं। गंगा किनारे बहते शवों का मुद्दा उस समय भारत ही नहीं दुनिया के मीडिया में छा गया था, जब भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही थी। उस समय इलाहाबाद में श्रृंगेश्वर धाम और फाफामऊ घाट की तस्वीरें देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। उत्तर प्रदेश की सरकार की इस मामले में देश के भीतर बड़ी बदनामी हुई थी। इन इलाकों के लोग इस समय भी बहुत डरे हुए हैं, जब कोरोना वायरस की तीसरी लहर चल रही है। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मौके पर दावा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश कोरोना की तीसरी लहर के लिए पूरी तरह तैयार है। वो ये भी दावा कर चुके हैं कि दूसरी लहर में भी यूपी ने देश में सबसे बेहतर तरीके से कोविड को संभाला था। कोरोना की दूसरी लहर जब अपने विकराल रूप में थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2021 के दौरान 3,438 मौतें दर्ज की गई थीं और मई 2021 में 8,108 मौतें दर्ज की गई थीं। लेकिन कई विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि मौतों का असल आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। फिलहाल सरकार तैयारी पूरी होने का दावा कर रही है, लेकिन जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और राज्य के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए।
और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। सैयद मीसम का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम ईरान की एक अन्य सफल महिला से आपको परिचित करवाएंगे। ईरान में इन दिनों एक ऐसी महिला को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत ही मजबूती के साथ कदम उठाए हैं और अपना जीवन स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया है। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण के महत्व को इस तरह समझा जा सकता है कि अगर ये ना हो तो समाज में जीवन शक्ति, परिपक्वता और आगे बढ़ने की प्रेरणा खो जाती है। साथ ही पर्यावरण के ना होने से स्वस्थ मानव जीवन पर खतरा मंडराने लगता है। इन दिनों इस्लामी गणतंत्र ईरान में एक ऐसी महिला की जमकर तारीफ हो रही है कि जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए गंभीरता से कदम उठाए हैं और स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। उन्हें पर्यावरण और प्राकृतिक विरासत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में चुना गया है। इसी तरह कृषि योजनाओं के संबंध में उनके द्वारा अनुवाद और प्रकाशित की गई किताबों को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही रखशान बनी एतमाद द्वारा आदम और हव्वा पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री में भी उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया है और सभी हमारे पेड़ नामक डॉक्यूमेंट्री में भी उनके बारे में स्क्रीनिंग की गई है। डॉक्टर महलका मल्लाह ईरान की सबसे पुरानी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, एक ऐसी बुजुर्ग महिला कि जिन्होंने सभी को पर्यावरण की रक्षा करना सिखाया है। न समय जानता है और न वो खुद। जब राशियल कार्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के जरिए इस धरती पर रहने वालों का ध्यान पृथ्वी पर मौजूद पर्यावरण को पहुंचने वाले नुकसान की ओर खींचा, तब से महलका मल्लाह के जीवन की बुनियाद ही बदल गई। आधी शताब्दी से अधिक समय गुजर जाने के बाद आज भी किसी ने उनके घर से कूड़े को बाहर डालते हुए नहीं देखा, बल्कि उन्होंने अपने घर के कचरे को शून्य तक पहुंचा दिया है। मल्लाह ने फ्रांस के सोरबोन विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में पीएचडी की है। व्यवहारिक तौर पर उन्होंने एक पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में गंभीरता के साथ काम करना शुरू किया जब वो तेहरान विश्वविद्यालय में अपनी जिम्मेदारियों से सेवानिवृत्त हो गई। प्रकृति और पर्यावरण में अपनी गहरी रुचि के कारण डॉक्टर मल्लाह ने वायु प्रदूषण पर शोध और अध्ययन करना जारी रखा। वर्ष 1977 में वो राष्ट्रीय निरीक्षण संगठन में अध्ययन के एक समूह में शामिल हुई कि जिसका काम तेहरान में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता पर वायु प्रदूषण के प्रभाव की जांच करना था। एक ऐसा अध्ययन जो अंततः वर्ष 1994 में पर्यावरण प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए ईरानी महिलाओं की एक संस्था की स्थापना का कारण बना। पर्यावरण प्रदूषण से मुकाबले के लिए महिलाओं की बनी संस्था द्वारा जो सबसे पहला बयान जारी हुआ वो डॉक्टर महलका मल्लाह द्वारा था और उस बयान में आया था कि हमारे ग्रह पृथ्वी धरती गति और गतिशीलता के इस मिथक को अपने स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए हमारे समर्थन की आवश्यकता है। आइए हम हरी धरती और नीले आकाश के लिए एकजुट होकर प्रयास करें। महलका मल्लाह की आयु 100 साल से अधिक है, लेकिन फिर भी वो अभी भी व्हीलचेयर पर बैठकर पेड़ लगाती हैं। उन्हें इस आयु में भी धरती को लेकर ऐसी चिंता रहती है कि जैसे किसी माँ को अपने बच्चे की चिंता होती है। यही कारण है कि उन्हें ईरान के पर्यावरण की माँ कहा जाता है। डॉक्टर मल्लाह को धरती की माँ और पेड़ों की माँ के नाम से भी पहचाना जाता है। ईरान के पर्यावरण की सबसे पुरानी रक्षक कि जिन्होंने अब तक अपने जीवन का एक लंबा समय इसी काम में गुजार दिया है, वो लगातार पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में और सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही ईश्वर द्वारा पृथ्वी के रूप में दिए गए अनमोल तोहफे की रक्षा के लिए संघर्ष करती चली आ रही हैं। मल्लाह का मानना है कि प्रकृति के संरक्षण में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसे कभी नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि महिलाओं के अंदर ईश्वर ने आरंभ से ही एक विशेषता दी है और वो है पालन पोषण की भावना। ये भावना ऐसी है कि जिसके कारण प्रकृति के संरक्षण में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ईरान की इस सफल महिला का मानना है कि क्योंकि महिलाएं मानव जाति की जननी और पोषण करता है, घरों में भी महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। घर के कूड़े को एकत्रित करने से लेकर घर के पर्यावरण का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी ज्यादातर महिलाओं पर ही होती है, इसलिए प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिला का मल्लाह ने उन वर्षों के दौरान भी जब प्राकृतिक आपदाओं ने मातृभूमि को जकड़ लिया था खामोश नहीं बैठी और लगातार पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में प्रयास और संघर्ष को जारी रखा। इस संबंध में होने वाली संगोष्ठियों और बैठकों में नियमित रूप से वो शामिल होती रहीं। डॉक्टर मल्लाह ऐसी पहली महिला हैं कि जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों को एकजुट किया। उन्होंने महसूस किया कि नहरों, तालाबों, झीलों को सूखने और जंगलों को तबाह होने से बचाने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। वो पूरी ताकत के साथ आगे आईं और सरकारी एवं गैर सरकारी सभी संस्थाओं और संगठनों को इस काम के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लाने में अहम भूमिका निभाई। मल्लाह के 4 बच्चे हैं। उन्होंने शुरू से ही बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया, क्योंकि उनका मानना था कि अगली पीढ़ी को ही प्राकृतिक संसाधनों के महत्व का एहसास होगा और इसीलिए उसे संरक्षित रखने के बारे में आरंभ से ही उन्हें जानना और प्रयास करना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने अपने काम की शुरुआत शिक्षा से की। पर्यावरण से संबंधित पत्रिकाओं में लेख के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया। उनका कहना है कि लोगों को चाहिए कि वो प्रकृति के दर्द को समझें, क्योंकि मानव जीवन में प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी भूमिका है। इंसान जितना ज्यादा प्रकृति का ध्यान रखेगा, प्रकृति भी उतना ही इंसान के लिए लाभदायक बनी रहेगी, क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ करना आपदाओं को दावत देना होता है। डॉक्टर महिला का मल्लाह के चेहरे की झुर्रियों के पीछे उनके अनुभवों और उनके संघर्षों की कहानियां छिपी हुई हैं। जब वो बोलती हैं तो ऐसा आभास होता है कि जैसे कोई इतिहास की मोटी सी किताब सामने रखी है और उसे पढ़ रही हैं। एक छोटे से विराम के बाद अपने बचपन और युवावस्था को याद करती हैं। डॉक्टर मल्लाह को किताबों से भी बहुत लगाव था। वर्ष 1968 में वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च के पुस्तकालय की निदेशक बनी। वर्ष 1995 में पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ महिलाओं की एक संस्था की स्थापना की। पर्यावरण के संबंध में उनके द्वारा लिखे गए अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। मल्लाह से जब ये पूछा गया कि क्यों उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ बनी संस्था का नाम महिलाओं से जोड़ा, तो इसके जवाब में वो कहती हैं कि इसके 4 कारण हैं जो ये साबित करते हैं कि प्रकृति प्रदूषित करने में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। अगर महिलाओं को इस संबंध में जागरूक किया जाए, उन्हें सिखाया जाए, तो इनमें से कई संकटों को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे पहले ये कि धरती पर जनसंख्या को बढ़ाना महिलाओं का काम है और बढ़ती आबादी धरती पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के तबाह होने का सबसे अहम कारण है। अगर महिलाओं को जागरूक किया जाए तो इस समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा ये कि बच्चे ज्यादातर माँ की गोद में ही परवरिश पाते हैं। माँ और मूल रूप से एक महिला स्वभाव से एक शिक्षिका होती है और सही शिक्षाओं के साथ वो समाज के लिए एक जिम्मेदार पीढ़ी को प्रशिक्षित कर सकती है। तीसरी ये कि घर का सामान खरीदने और खाना बनाने की जिम्मेदारी भी अधिकतर महिलाओं की होती है, इसलिए कचरे का मुख्य उत्पादन उन्हीं के पास होता है। अगर वे जागरूक हो जाएं तो इतना कूड़ा इकट्ठा ही ना हो। चौथे ये कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में पूंजीपतियों के हाथों में अधिक खिलौना है। दूसरे शब्दों में इसको इस तरह कह सकते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में उपभोक्तावाद और खरीदारी में रुचि अधिक होती है। ईरान के पर्यावरण की जननी जिनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री इन दिनों सीमा पार भी प्रदर्शित की जा रही है, जिसे देखकर विश्व भर के पर्यावरण कार्यकर्ता आश्चर्यचकित रह गए हैं। डॉक्टर महलागम अल्लाह ने पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण संबंधी विषय को शामिल करवाया है। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत मेहनत की है। बच्चों के स्कूल की किताबों से लेकर महिलाओं को जागरूक करने तक के लिए उन्होंने अभियान चलाया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज घरेलू महिलाओं और बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता साफ साफ दिखाई देती है। पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ महिलाओं की बनी उनकी संस्था आज ईरान के 16 प्रांतों में सक्रिय है। डॉक्टर मल्ला इस संबंध में इतना ज्यादा गंभीर हैं कि उन्होंने कुछ वर्ष पहले ही अपने घर को भी अपनी संस्था के कार्यालय में बदल दिया। आज पूरे ईरान में उनकी संस्था से जुड़ी हजारों महिलाएं शहरों, गांवों और विभिन्न इलाकों में पेड़ लगाते और लोगों को इस काम के लिए प्रोत्साहित करते हुए मिल जाएंगी। बहुत सारे संगठन उनसे प्रेरणा लेते हुए आज पर्यावरण संरक्षण के अभियान से जुड़ गए हैं। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपने विचार हमें बताते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज़।